आरव को रात को होश आ चुका था। उसके पास उस वक्त सिर्फ आयु थी। आयु के मोबाइल का अलार्म बजा और वो जागी तो उसने आरव को होश में देखा। आयु आरव को होश में देखकर काफ़ी खुश हुई। वो उससे बात कर रही थी, लेकिन बात करते वक्त उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। आयु के बेहोश होते ही आरव ने आइज रोल की और फिर आयु की तरफ देखा। उसकी आधी बॉडी बेड पर थी और आधी नीचे लटकी हुई थी। कैसी बीमार डॉक्टर है ये, मेरा ख्याल रखने के लिए इसे यहाँ रखा गया था और ये खुद बेहोश हो गई। अब बाहर जाकर सबको बताएगा कौन कि मुझे होश आ गया, या फिर ये भी मुझे करना पड़ेगा, आरव ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। उसके एक हाथ के आईवी लगी हुई थी, फिर भी उसने जैसे तैसे मैनेज करके आयु को बिस्तर पर खींचा। आरव आयु के चेहरे की तरफ देखकर कहा, लगता है मेरी एब्सेंस में इसने खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। देखो थोड़े ही दिनों में कितनी वीक लग रही है। होश में आओ मिसेस खुराना, मेरा चेकअप करना है, ना कि खुद बेहोश होकर मेरी मुश्किलें बढ़ानी है। आरव आयु का हाथ पकड़कर उसे होश मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने दिनों से बेहोश होने के कारण उसकी बॉडी भी जल्दी एग्जॉस्ट हो गई। आयु को फिर भी होश नहीं आया था तो आरव वहीं आंख बंद करके लेट गया। आयु भी उसके पास में बेहोश लेटी हुई थी। आरव को फिर से नींद आ चुकी थी, लेकिन आयु को लगभग आधे घंटे में खुद से होश आ गया और उसने खुद को बेड पर पाया। आयु पुरानी बातें याद करते हुए धीरे से बड़बड़ाकर बोली, आरव को होश आ गया था और शायद लगता है मैं बेहोश हो गई थी। आरव, आयु जल्दी से खड़ी हुई और आरव की तरफ देखा। वो जल्दी से स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन उठाकर आरव का चेकअप करने लगी। थैंक गॉड सब नॉर्मल है और तुम ठीक हो गए हो, आयु ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर आरव के फोरहेड पर किस किया। आरव को अपने सामने पहले की तरह बिल्कुल ठीक देखकर आयु की नींद उड़ चुकी थी और वो आरव के उठने का इंतजार करते हुए उसके पास में ही बैठ गई थी। सुबह के लगभग 5 बजे के करीब आरव की फिर से नींद टूटी। उसने देखा आयु उसके पास में बैठी हुई है। तब आरव ने धीरे से कहा, तुम तो मेरे बिना अपना ध्यान भी नहीं रख पाई। हाँ, क्योंकि मुझे आदत है ना तुम्हारी डांट सुनने की। जब तक तुम मुझे दो बातें सुना नहीं देते, मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, और अब जब मुझे कोई सुनाने वाला नहीं था तो मैंने ठीक से कुछ नहीं खाया। प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुम बिल्कुल पहले की तरह चाहिए, आयु ने नम आँखों से कहा। आरव ने बिना कुछ कहे आयु को अपने पास आने का इशारा किया। आयु आरव के पास आकर लेट गई। उसने आरव के सीने पर हल्का सा अपना सिर रखा और भारी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे हक को मिस किया, तुम्हारी हर एक चीज़ को मैंने मिस किया। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रुकना है, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इतने दिनों तक आयु जो शिकायतें आरव के पास बैठकर उसकी बेहोशी की हालत में कर रही थी, उसके होश में आने पर उसने वही सब बातें कहीं। अच्छा हुआ ना तुम्हें नहीं लेकर गया, वरना मेरे साथ तुम भी इसी हॉस्पिटल के किसी बेड पर मिलती। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। और तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? आंखें बंद हुई तब भी दिल में तुम्हारे ही ख्याल थे, आरव ने जवाब दिया। आरव ज्यादा बोल नहीं पा रहा था, इसलिए आयु ने उसे चुप रहने के लिए कहा और चुपचाप उसके सीने पर सिर रखकर लेटी रही। यही वो सुकून था जो दोनों पिछले कुछ दिनों से मिस कर रहे थे। आरव और आयु को कुछ ही देर में वापस नींद आ गई थी। अगली सुबह अयान हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आते ही वो सबसे पहले आरव से मिलने उसके रूम में जाता था। हमेशा उसके हॉस्पिटल आने का टाइम अलग था, लेकिन आरव के वहाँ होने की वजह से वो जल्दी ही आ जाता था। जैसे ही अयान आरव के कमरे में गया, उसने देखा बेड पर आरव और आयु दोनों लेटे हुए थे और गहरी नींद में थे। उन दोनों को साथ में देखकर अयान के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, लगता है भाई को होश आ गया, तभी ये इनके पास में सो रही हैं। टचवुड, ये हमेशा ऐसे ही साथ में रहें। दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून दिख रहा है, वरना आयु तो पिछले दिनों में ठीक से किसी से बात भी नहीं करती थी। इससे पहले कि यहाँ कोई और आए मुझे इन्हें जगाना होगा। अयान मुस्कुराते हुए उनके पास गया और अपने मोबाइल में एक स्लो टोन बजाई, जिसे सुनकर आरव और आयु दोनों की नींद एक साथ टूट गई। अयान को अपने सामने देखकर आयु जल्दी से आरव के पास से खड़ी हो गई। वो मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई थी, आरव को होश आ गया था और हम बातें करते हुए अयान के अचानक आने पर आयु एम्बेरस हो गई थी और वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तभी अयान ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कमॉन तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? तुम बिल्कुल सही जगह पर सोई हुई थी, लेकिन ये जगह ही गलत है, हॉस्पिटल है ये। चलो अब शर्माना छोड़ो, मुझे भाई का चेकअप करना है। अयान की बात सुनकर आयु तुरंत साइड हट गई। अयान के फेस पर हल्की स्माइल थी और वो आरव का चेकअप कर रहा था। उसे चेक करने के बाद अयान ने कहा, शाम तक आपकी सारी रिपोर्ट्स फिर से करवानी होगी, बाकी इनिशियल चेकअप में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। आपको पेन तो फिर नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आरव ने धीरे से जवाब दिया। अयान ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है आप दोनों यहाँ पर रुकिए, मैं दादी को इन्फॉर्म करके आता हूँ। भाई आप ज्यादा बात मत कीजिएगा, इससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होगी। आरव को सब कुछ समझाने के बाद अयान बाहर आ गया। उसने कबीर को कॉल करके आरव के होश में आने की बात बताई और गौरवी जी को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा। कबीर से बात करने के बाद अयान ने कुछ पल सोचा और फिर अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसकी स्क्रीन पर छवि का नंबर निकला हुआ था। मॉम जैसी भी हैं, लेकिन जब से भाई हॉस्पिटल में है वो हमेशा आकर उनके बारे में पूछती हैं। काश भाई और मॉम के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, और इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। मुझे मॉम को बता देना चाहिए कि भाई को होश आ गया है, अयान ने खुद से कहा और फिर छवि को कॉल करने का सोचा। जैसे ही उसने छवि को कॉल किया, छवि ने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इस वक्त वो हॉस्पिटल में आरव के रूम के सामने ही खड़ी थी। छवि को पता नहीं था कि आरव को होश आ गया है। वो जब भी हॉस्पिटल में फैज से मिलने आती थी तब आरव को जरूर देखने आती थी। आज भी यही सोचकर छवि आरफ के कमरे में गई और अंदर आते ही उसने देखा आयु आरफ के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। इससे वो समझ गई थी कि आरफ को होश आ गया है। आरफ और उसके बीच इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी छवि उससे बात करने आगे गई तो वहीं छवि को देखकर आरफ के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। आरफ छवि को कुछ कहता उससे पहले आयु ही बोल पड़ी, आप इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं? मैंने आपको इतनी बार कहा है कि आप इस कमरे के आसपास मत आया कीजिए, फिर भी यहाँ पर क्यों मुंह उठा कर आ जाती हैं?
आरफ छवि को कुछ कहता तो एक पल के लिए छवि बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आयु उससे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। छवि ने उसकी तरफ सिर हिलाया और तेज आवाज में कहा, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में है। छवि के मुंह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर आरफ के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने आयु की तरफ देखकर कहा, चलो मिसेस खुराना, अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने, मेरी माँ अपने बेटे से मिलने आई है, तो बात करना तो बनता है। आयु हैरानी से आरफ की तरफ देख रही थी। उसने आरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आरफ ने फिर से इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जाने से पहले आयु ने एक नज़र छवि की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। आयु के बाहर जाते ही छवि वहां लगी टेबल पर बैठी और उसने आरफ की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना आरफ? एक्सीडेंट मेरा हुआ था और मेंटल कंडीशन आपकी खराब लग रही है मिसेस सिंघानिया, आरफ ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ये देखने आती हैं क्या कि मैं होश में आ गया हूँ या नहीं? आखिर आपको अपने मास्टर को जाकर भी तो बताना है। मैं उसे कुछ नहीं बता रही हूँ। हम दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन तुम इस सच को नहीं बदल सकते कि तुम मेरे बेटे हो। छवि ने जवाब दिया, काश मैं बदल सकता, पर सही कहा किसी ने, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती हैं। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, कहीं मेरे दिल को गलतफहमी ना हो जाए कि जिस औरत ने मुझे जन्म दिया था उसे मेरी परवाह हो रही है, आरफ ने बिना किसी भाव के कहा। वो बात करते टाइम छवि की तरफ भी नहीं देख रहा था। छवि अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने आरफ को नज़र भर देखा और फिर भारी आवाज में कहा, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन मेरे दिल में सच में तुम्हारी परवाह है। मैंने अयान को कहा था कि वो तुम्हें अलर्ट कर दे और तुम मुंबई ना आओ। फैज़ ने पहले ये काम मुझे दिया था, मैं अपने बेटे की जान कैसे ले सकती हूँ? अब तक आरफ छवि की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने छवि की आखिरी बात सुनी, आरफ ने सर्द निगाहों से छवि की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हमारे बीच असली दुश्मनी की शुरुआत उसी दिन हुई थी जब आपने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए जो बचे कुचे इमोशंस थे वो ज़रूर खत्म हो गए थे मिसेस सिंघानिया। ये अच्छे होने का दिखावा अयान और रायशा के सामने कीजिए, शायद उन्हें यकीन हो जाएगा, पर मुझे नहीं होगा। छवि ने इस बार आरफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से जाने लगी तभी आरफ ने पीछे से हल्की तेज आवाज में कहा, और हाँ, अपनी करतूतों के लिए मेरी मिसेस खुराना को ब्लेम मत कीजिए। आप ही ने उसे एजाज खान के पास फंसाया था ना, उसकी कोई गलती नहीं। फिर भी आप उसे ब्लेम कर रही हैं कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। किसी साइको के वन साइडेड लवर की वजह से मैं अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ने वाला, और प्लीज आगे से मुझसे मिलना हो तो उस एटीट्यूड के साथ मिलना। ये सो कॉल्ड माँ होने का दिखावा तो बिल्कुल मत करना। यू कैन लीव नाउ। आरफ की बात सुनकर पहली बार छवि को बुरा महसूस नहीं हो रहा था। जो भी था वो सच था। छवि नम आंखों से वहां से चली गई। वो बाहर निकली तो आयु ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो एक पल के लिए वो भी हैरान हो गई। ये औरत आरफ को इस हाल में देखकर रो रही है, कहीं सच में इसका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया, आयु ने खुद से कहा, और फिर कमरे में वापस आरफ के पास आ गई। आरफ का भी मूड अच्छा नहीं था और वो उसका चेहरा देखते ही वो समझ गई थी। आयु ने आरफ का कंधा सहलाते हुए कहा, दादी यहाँ आ रही हैं, चलो अपना मूड सही करो, वो बहुत दिनों बाद तुम्हें देखने वाली है और तुम ऐसे मुंह बनाकर उनसे मिलोगी तो और परेशान हो जाएगी। आरफ ने उसकी बात पर हामी भरी और हल्की मुस्कुराहट दी। आयु आरफ से बात कर रही थी तभी गौरवी जी और कबीर भी वहां पहुंच गए थे। आरफ को इस तरह हॉस्पिटल बेड पर देखकर गौरवी जी रोने लगी। उन्होंने आरफ का हाथ अपने हाथ में लिया और सुबकते हुए कहा, अब से मैं तुझे एक कदम भी बाहर नहीं रखने दूंगी, जो काम करना है घर से करोगे तुम, गाड़ी बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगे, अपने साथ एनी टाइम कबीर या ड्राइवर को रखोगे। कमॉन दादी, अब मैं बच्चा नहीं रहा और आपके रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए, रोज रोज एक्सीडेंट करवा कर नहीं आता जो आप इतनी पाबंदियां लग रही हैं, आरफ ने जवाब दिया। उसे इस तरह बोलते देखकर गौरवी जी के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, तो वहीं कबीर भी बहुत खुश था। कबीर अपने इमोशंस रिवील नहीं करता था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। गौरवी जी से बात करने के बाद आरफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी इस तरह मुंह बनाकर मत खड़े रहो, जिंदा हूं मैं, अभी तक सबके चेहरे ऐसे हो रखे हैं जैसे कि। आयु समझ गई थी कि आरफ क्या बोलने वाला है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो बीच में बोली, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो अभी तुम्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर दूंगी। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, मेरे होते हुए मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा, कबीर ने सीरियस टोन में कहा।
गौरी जी और आयु उनकी बात का मतलब भले ही ना समझे, लेकिन आरव अच्छे से समझ पा रहा था। आरव एक तक कबीर के चेहरे की तरफ देख रहा था।